समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
आज दुनिया भर में रह रहे केरल मूल के लोग तिरु ओणम मना रहे हैं। ये केरल का सबसे बड़ा त्यौहार है जो राजा महाबली की घर वापसी का प्रतीक है। ये उत्सव केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाता है और आज ही पैगंबर हजरत मोहम्मद का भी जन्मदिन है। ईद मिलाद उन नबी आज विश्व भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। तो आप सभी को तिरु ओणम और ईद मिलाद उद नबी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
Namaskar and a very good afternoon, Akarshita. Akarshita, yes, you just mentioned in the beginning that we are celebrating many things today like Onam and then Prophet Muhammad's birth anniversary also with prayers, charity, processions and devotion. But yes, along with it, today is 5th of September and that this date brings me in me the memories of my good old school days when we as students used to get dressed up as teachers and try to teach in junior classes imitating our favorite teachers. Aapne bhi shayad kiya hoga, which was one of the common rituals followed in schools. Teachers also sometimes used to take up the role of students to symbolize the mutual bond of learning shared between them. So today is the day when we express our special gratitude to our teachers. Their guidance has been our compass in life. Wishing all the teachers a very happy Teacher's Day. Thank you for being more than just a teacher. You are our mentor, friend, and also our inspiration. So on this Teacher's Day, I celebrate your patience, wisdom, and kindness. How beautiful our culture is, Akarshita. I was just thinking about it, where we bond with everyone on the pretext of festivals and celebrations, and we come together and make lovely traditional cuisines and create some lovely memories.
जी बिल्कुल, चाहे वो हमारे होली की गुजिया हो या फिर दिवाली का जो अलग अलग तरीके का पकवान। In fact, in Onam
too, we do make different kinds of things, whatever is special to that festival.
हर त्योहार के लिए एक स्पेशल मिठाई होती है हमारे यहाँ, जो हमारी सांस्कृतिक विविधता को मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से दर्शाती भी है।
राइट, एंड सो नाउ विथ ऑल दीज थिंग्स इन आवर माइंड, लेट्स बिगिन आवर रियल परिक्रमा एंड अपडेट यू ऑन all the headlines at this hour. So let's begin with what's making the top news. President Draupadi Murmu calls for according highest priority to girls' education as the most effective way to promote women-led development. Presents National Teachers Awards 2025 in New Delhi.
वस्तु और सेवा कर में कटौती का समाज के विभिन्न वर्गों ने खुलकर स्वागत किया.
India welcomes positive developments towards resolving ongoing Ukraine conflict.
अमेरिका ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करने के आरोप में मध्य अमेरिका के नागरिकों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की।
ईद मुलाद इन नबी एंड ओनम बीइंग सेलिब्रेटेड विद एंथुसियाज्म इन द कंट्री।
और आज गुजरात, राजस्थान, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कच्छ और मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान।
And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And of course, today we will talk about Teacher's Day.
एक शिक्षक जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी ऊपर उठना सिखाता है, जो हमारा संबल बन हमें सफलता के मार्ग पर आगे ले जाता है, एक शिक्षक जो अपनी निश्चल निष्कपट निस्वार्थ सेवा से इस देश की पाई पाई चुकाता है, जो अपनी गुरु शिष्य की परंपरा से इस भारत वर्ष का भविष्य बनाता है, वो सिर्फ उपदेश ही नहीं देता, देता है वो ज्ञान, वो गुण, वो संस्कार, वो चरित्र, वो आत्मा, वो भावना और वो विश्वास जो हमें मनुष्य से मनुष्यता सिखाती है। आज हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं। ये दिन प्रख्यात दार्शनिक, विद्वान और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
And here I quote Albert Einstein, who had said, "I never teach my pupils. I only attempt to provide the conditions in which they can learn." This year, the celebration takes on special meaning with the theme Inspiring the Next Generation of Learners, highlighting the essential role teachers play in nurturing the future leaders, thinkers, and innovators.
शिक्षक दिवस उन शिक्षकों के निस्वार्थ योगदान की सराहना करने के लिए मनाया जाता है जो छात्रों और समाज के मानस को आकार देते हैं। ये उनके मार्गदर्शन और मूल्यों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है जो शिक्षार्थियों पर आजीवन प्रभाव डालते हैं।
Yes, the tradition of celebrating Teachers' Day on 5th of September began in 1962 when students and well-wishers of Dr. Radhakrishnan requested to celebrate his birthday. And instead of a personal celebration, he suggested the day be dedicated to teachers across the nation. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, often referred to as S. Radhakrishnan, was an eminent Indian scholar, philosopher, and statesman who made significant contributions to the fields of education and diplomacy.
जी हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षक और दार्शनिक थे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगाया था। इसलिए जैसा कि अनुजा ने बताया कि जब उन्हें राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी गई थी, तब उन्होंने कहा था कि उनके जन्मदिन को यदि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो उन्हें बहुत खुशी होगी। इसके बाद सरकार की ओर से इसे मान्यता दी गई और प्रतिवर्ष 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये दिन हमें अपने गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करने की प्रेरणा देता है। गुरुजनों का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए शेर में भी कहा गया है कि माँ बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहमत, है रोक टोक उनकी हक में तुम्हारे नेमत।
Dr. Sarvepalli Radhakrishnan's life and work continue to inspire and influence generations, both in India and around the world. Teachers' Day theme this year is Inspiring the Next Generation of Learners, which emphasizes the evolving role of educators in shaping not only academic knowledge, but also creativity, confidence, and critical thinking.
आज शिक्षक न केवल ज्ञान प्रदाता है बल्कि मार्गदर्शक और प्रेरक भी है जो छात्रों को निरंतर बदलती दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हैं। और अनुजा, अगर बात करें तो हमारे जो शिक्षक हैं वो सिर्फ हमें कुछ विषयों का ज्ञान ही नहीं देते बल्कि हमें जीवन में भी बहुत ऐसी कठिनाइयां होती हैं जब हम बहुत उदास हो जाते हैं, हमारा कोई एग्जाम नहीं निकल रहा होता है कुछ ऐसा, तो हम देखते हैं कि वो कितने हमारे सिर्फ वो शिक्षा ही नहीं देते, वो हमें वो मोटिवेशन भी देते हैं आगे बढ़ने का। और आजकल हम देख रहे हैं बहुत ढेर सारी ऐसी टीवी सीरीज भी आ रही है जिसमें दिखाते हैं कि किस तरीके से एक शिक्षक जो है वो सिर्फ हमें सिर्फ पढ़ाता नहीं है, सिर्फ ज्ञान ही नहीं देता, वो कहीं ना कहीं हमारे पूरी जो कैरेक्टर है उसको बिल्ड करता है।
राइट, एंड इफ वी रिमेम्बर सम ऑफ द बेस्ट टीचर्स टूडे, वी फर्स्ट टेक द नेम ऑफ सावित्री बाई फुले, हु वॉज एन एजुकेशनिस्ट हु डिवोटेड हरसेल्फ टू एजुकेटिंग वुमेन एंड लो कास्ट पीपल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. She holds the title of being the first female teacher to work in the first women's school in India.
जी हाँ, अपने पति ज्योतिराव गोविंद राव फुले, जिन्होंने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया और एक महिला के रूप में जीवन जीने में उनकी मदद की, उनके साथ मिलकर उन्होंने अपने पूरे जीवन में 18 स्कूल बनवाए। वे एक समाज सुधारक, परोपकारी, शिक्षाविद और कवित्री थी। तमाम बाधाओं के बावजूद शिक्षा और महिलाओं की आजादी के लिए अथक प्रयास करने वाली फुले को आज भी सम्मान से देखा जाता है।
एंड अनदर नेम व्हिच कम्स इनटू माय माइंड इज एनी सलिवन, हु इज रिगार्डेड एज हिस्ट्रीज मोस्ट इंस्पायरिंग टीचर, अ मिरेकल वर्कर सिंस शी डिवोटेड मोस्ट ऑफ हर लाइफ टू टीचिंग हेलेन केलर, हु वाज ब्लाइंड एंड डेफ टू रीड एंड कन्वर्स. Her innovations in teaching blind individuals to communicate using braille and spelling out letters by touching the palm have had a significant impact on modern day education as well. Annie Sullivan taught Helen Keller how to communicate when no one thought it was possible.
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिक्षक आमतौर पर अपने छात्रों को होमवर्क देते हैं, लेकिन वो बदलाव के लिए शिक्षकों को एक होमवर्क देना चाहते हैं। वो ये है कि अपने छात्रों के साथ मिलकर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और मेक इन इंडिया तथा वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाएं। श्री मोदी ने स्कूलों से ऐसे अवसर स्वदेशी दिवस या स्वदेशी सप्ताह के रूप में मनाने का भी आग्रह किया जब छात्र अपने घरों से स्थानीय उत्पाद लाएं और अपनी कहानियां साझा करें।
लाल किले से मैंने वोकल फॉर लोकल स्वदेशी अपनाने का बड़ा आग्रह किया, आह्वान। स्वदेशी यानी जो हमारे देश में बनता है, वो चीजें जिसमें मेरे देशवासियों के पसीने की महक है, वो मेरे लिए स्वदेशी है।
Yes, Akarshita, Mr. Modi also encouraged the use of indigenous materials in art and craft classes and school celebrations to nurture a lasting sense of pride in Indian-made goods. He emphasized discussions on the origin, the makers, and national importance of Swadeshi products to foster deeper awareness. The Prime Minister said that there should be boards outside every house and shop of Har Ghar Swadeshi.
दूसरों पर निर्भर रहने से देश कभी उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता जितना उसका सामर्थ्य होता है। आज के विद्यार्थियों और आने वाली पीढ़ियों में एक सवाल शुरू से ही प्रचारित और प्रसारित किए जाने की जरूरत है। ये हमारा कर्तव्य है। जो काम महात्मा गांधी जी ने किसी समय हमारे लिए छोड़ा है, अब पूरा करने का सौभाग्य हमें मिला है।
ये दिन उन अद्भुत मार्गदर्शकों को समर्पित है जो हमारे भविष्य को आकार देते हैं। आज हम उन नायकों का सम्मान करने के लिए एक पल निकालते हैं और हम अपने टीचर्स को एक छोटा सा मैसेज दे सकते हैं अनुजा कि हैप्पी टीचर्स डे। हम उनको इतने सालों बाद याद कर सकते हैं और उनको भी बहुत खुशी मिलेगी कि आज भी हम उनको याद करते हैं।
Right, teachers are like candles, Akarshita. They consume themselves to light the way for others. And today we celebrate not just the lessons, but the patience, the care, the encouragement, and the inspiration our teachers give us.
आइए हम अपने पसंदीदा शिक्षकों के बारे में सोचें और उन्हें सेलिब्रेट करें जिन्होंने हम पर तब विश्वास किया जब हम स्वयं पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे।
Yes, let's take this moment to thank them not just for their knowledge but for their unwavering dedication. Thank you, teachers.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। राजधानी के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में सरस आजीविका मेला 2025 आज से शुरू हो चुका है। ये मेला 5 से 22 सितंबर तक चलेगा। हमारे संवाददाता से और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं।
दिल्ली में चल रहे सरस आजीविका मेले में देश भर से आई स्वयं सहायता समूहों की 400 से अधिक महिलाएं अपने स्टॉल के माध्यम से अपनी प्रतिभा और उद्यमिता का प्रदर्शन कर रही हैं। इस वर्ष के मेले की थीम लखपति दीदी है। इस मेले में हस्तशिल्प, हस्तकला और घरेलू उत्पादों के साथ साथ यहां इंडियन फूड कोर्ट भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। यह मेला महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक अहम कदम है। राजस्थान से आई एक प्रदर्शक राजकमल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि वह कई सालों से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि बड़ी संख्या में लोग उनका सामान खरीद रहे हैं।
मैं समूह में जुड़कर 4-5 साल लग गए मेरे को। मैं समूह में जुड़कर मैं अचार बनाती हूँ तो ये मेरे बहुत अच्छे है। मेरे को नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देती हूँ, भजन लाल जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं जुड़कर 4 महीने में गरीब महिला हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। मैं इसमें ग्राम संगठन में लोन लिया, मेरे को बड़ौदा बैंक से मैं लोन लिया तो ये मेरे 12 महिला को मैं रोजगार दे रही हूँ। मेरे घर पे ये पूरी फैमिली को मेरे को जुड़कर सहयोग दे रहे हैं मेरे साथ में।
इस मेले में कुल 400 स्टॉल लगाए गए हैं जिनमें हथकरघा, हस्तशिल्प और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों की प्रदर्शनी और बिक्री की जा रही है। परिक्रमा के लिए नितिका गुप्ता।
So Keralites across the world are celebrating Thiru Onam today. This harvest festival is celebrated irrespective of caste and religion by Keralites. The Onam festival started 11 days ago with Attham festival. We have more on this from our correspondent.
Onam is a magic word that evokes memories for Keralites all over the world. The Onam festival started 11 days ago with Attham. And today's Thiru Onam is the most auspicious day during this harvest festival. The Thiruvana celebration started with the Onapookalam, which is the floral carpet on the floors to welcome the legendary king Mahabali. According to Onam legends, the noble king Mahabali visits his kingdom of Kerala during the Onam days. Wearing of new dresses called Onakodi is another custom on Thiruvanam day. Onasadhya, the indispensable part of the Thiruvanam celebration, is being served in Kerala houses to increase the charm of Thiruvanam. This Onasadhya is the feast served on plantain leaves with rice, variety of curries and sweet called payasam. Thiruvana Sadhya was held in major temples including the hill shrine of Shabrimala, Guruvayur and Trikakara, which is believed to be the capital of Mahabali. After the Onasadhya is the time for traditional sports and cultural events. Thousands of cultural programs are being organized in various parts of Kerala on Onam. Various traditional dance forms including women's dance called Thiruvadhira Kali, colorful mass dance, Kummati Kali, etc. will be performed during Onam days in Kerala. After today's Thiruvanam, next 2 days will be celebrated as 3rd Onam and 4th Onam. Official level Onam celebrations also progressing in various parts of Kerala. State level official Onam celebration will conclude on Tuesday with the procession showcasing the cultural heritage of Kerala. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
केंद्र सरकार ने 4,445 करोड़ रुपए की लागत से देश में 7 स्थानों पर पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान यानी पीएम मित्र पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। इनमें से मध्य प्रदेश में धार के पीएम मित्र पार्क निवेश प्रस्तावों को आमंत्रित करने वाला पहला पार्क बन गया है। 2000 एकड़ जमीन पर स्थापित होने वाला यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन को धरातल पर उतारने का प्रयास है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
पीएम मित्र योजना भारत के वस्त्र उद्योग के लिए कताई बुनाई से लेकर परिधान निर्माण और उसके निर्यात करने तक की पूरी मूल्य श्रृंखला को एक स्थान पर लाने की पहल है। क्षेत्रफल के हिसाब से देश के सबसे बड़े पीएम मित्र पार्क धार के लिए नई दिल्ली में निवेशकों का सम्मेलन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने उद्योगपतियों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने निवेशकों को व्यापार व्यवसाय की सफलता की गारंटी देते हुए कहा कि देश के बीच में होने से यहां चारों तरफ से संपर्क आसान रहेगा।
एक इतने बड़े इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप करने के लिए मानव क्षमता जो होना चाहिए, लेबर जो उपलब्ध होना चाहिए वो पर्याप्त रूप से है। सब तरफ से अनुकूल, सबसे बड़ा हमारे सभी प्रकार के रेलवे के वाहन से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, तो ऐसा रहे कि 6 घंटे में आप दिल्ली जाना हो तो दिल्ली और मुंबई जाना हो तो मुंबई, दोनों तरफ आपके ट्रक लोड करके कहीं भी पहुंचा सके। और उससे बढ़कर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट आधे पौन घंटे की दूरी पर बाबा महाकाल के दर्शन करके वापस फैक्ट्री में आना हो वो भी आपको पास मिलने वाले हैं।
इस कार्यक्रम में 15 कंपनियों ने कुल 12,508 करोड़ रुपयों के निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। इससे 18,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस अवसर पर प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग 1000 एकड़ रखा था, इन्होंने दूरगामी सोच के लिए 2000 एकड़ से भी बड़ा पार्क रखा, इन्होंने इंडस्ट्री फ्रेंडली उसके कीमत को रखा।
नई दिल्ली में हुए इस निवेश सम्मेलन ने साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश निवेश के लिए देश का मॉडल स्टेट बनकर उभर रहा है। धार का पीएम मित्र पार्क प्रदेश को न सिर्फ औद्योगिक शक्ति देगा बल्कि भारत को टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने की दिशा में भी मजबूत कदम साबित होगा। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी भोपाल से मैं प्रशांत शर्मा।
Of course, Akarshita, we all know that online shopping has changed the way we buy our daily needs these days. From food to groceries, everything is just a click away. But while customers enjoy the convenience, small shopkeepers and traders often struggle to keep up with giant multinational platforms that charge heavy commissions and eat into their business as well. To offer a homegrown alternative, the Puducherry Traders Federation has launched a new delivery app called Puduvai Bazaar, Our Town, Our Shop. Managed entirely by young entrepreneurs, Puduvai Bazaar allows shopkeepers and hoteliers to sell directly to customers at fair prices. Let's hear what's more on this from our correspondent.
What makes the Puduvai Bazaar app different is its focus on local traders and customers. Unlike foreign platforms and big corporate apps that take up to 40% commission, this app charges only 10%, leaving more money in the hands of local businesses. Talking to Akashwani, Puducherry Traders Federation Secretary Muruga Pandian said that the goal is to give customers the same convenience of online shopping while ensuring that neighborhood stores and small eateries thrive. Customers can choose their favorite shops, order groceries, or even food from local restaurants and have it delivered at their doorstep or at the original price fixed by the seller. The app has already found success in places like Namakkal and Kadalur in Tamil Nadu, where traders have enthusiastically embraced the idea. For Puducherry too, the hope is that Puduvai Bazaar will become more than just a delivery app. It is a step towards strengthening the local economy, encouraging self-reliance, and reminding us that every rupee spent in our neighborhood shops help a family next door. For Parikrama, this is Bibin Asnath, Akashwani News, Puducherry.
And coming to the business news of the day now, benchmark domestic equity indices ended the week's last trading session on a flat note in volatile trade today. The markets had started the day with gains, but slipped later. Both the indices then witnessed a dramatic reversal, recovering from the day's lowest point. The Sensex dipped marginally by 7 points to close at 80,711. Conversely, Nifty added 7 points to settle at 24,741.
अब आइए बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। इसी क्रम में आज हम सबसे पहले चलेंगे आजादी के सफर पर।
Today is one of the most important days in Indian freedom struggle. On this day in 1920, the non-cooperation movement was agreed upon against the British rule to demand Swaraj. It was Gandhiji's first pan-India satyagraha, and the movement arose from the widespread outcry in India over the massacre at Jallianwala Bagh at Amritsar in April 1919, when the British-led troops killed 700 Indians. That anger was also compounded by indignation at the British failure to take adequate action against those responsible, especially General Dyer, who had commanded the troops involved in the massacre. With non-violent methods to be deployed during the Satyagraha, Gandhiji led the movement from the front, during which Indians resigned their titles, boycotted government educational institutions, courts, government service, foreign goods and elections, and refused to pay taxes. The British were perhaps for the first time confronted with such a united Indian front and were visibly shaken. However, a number of violent outbreaks broke the momentum of the non-violent movement. And after an angry mob murdered police officers in Chauri Chaura in Uttar Pradesh state in February 1922, Gandhiji himself called off the movement.
Even though the non-cooperation movement could not achieve its goal of Swarajya, the movement was a massive encouragement to millions of Indians and marked the transition of Indian nationalism from a middle class to a mass basis. It coloured the country with national zeal, as during this time, many Indian schools and colleges were opened and Indian-made goods became highly popular. The great South Indian patriot and freedom fighter, the Tamil helmsman, Kapalottiye Tamilian, V.O. Chidambaram Pillai or V.O.C. was born on this day in 1872 in Tirunelveli district of Tamil Nadu. Since his young days, he was influenced by Bal Gangadhar Tilak, and along with Subramanyam Siva and Subramanya Bharti, he was the prominent spokesperson for the cause of Swadeshi in the Madras presidency. A renowned advocate, he was one of the earliest to start the Dharma Sangha Nesavuchillai for handloom industry and the Swadeshi stores for the sale of India-made things to the people. He played a lead role in many institutions like the National Godown, Madras Agro-Industrial Society Limited, and the Desa Abhiman Sangam. The partition of Bengal in 1905 saw him taking a direct interest in the political struggle.
To challenge the domination of British in the shipping industry, he started the Swadeshi Steam Navigation Company on the 12th of November 1906. He purchased two steamships, SS Galia and SS Lavo for the company and commenced regular services between Tuticorin and Colombo. His efforts to widen the base of the Swadeshi movement brought him into increasing conflict with the British Raj, and on 12th March 1908 he was arrested on charges of sedition and his barrister's license was revoked. The court imposed a sentence of 2 life imprisonments. However, VOC stepped out of prison in late December 1912 after a High Court appeal reduced his prison sentence. He died in late 1936 with the passion for freedom still raging in his mind till the last moment. An erudite scholar in Tamil, a prolific writer and a dauntless freedom fighter, his life is a story of resistance, strife, struggle, suffering and sacrifice for the national cause.
Moving on, next we pay tribute to Mother Teresa, or Saint Mother Teresa, perhaps best known for the establishment of the Missionaries of Charity in 1950. With a humble beginning in Kolkata, this religious congregation expanded globally, becoming a beacon of hope for the poor, sick and destitute. It is her death anniversary today.
आज अनूठे व्यंग रचनाकार लेखक शरद जोशी की पुण्यतिथि है। अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विसंगतियों को उन्होंने अपनी पैनी कलम से सधे हुए अंदाज में व्यक्त किया। वे भारत के पहले व्यंगकार रहे जिन्होंने मुंबई में चकल्लस के मंच पर पहली बार 1968 में गद्य पढ़ा और किसी कवि से अधिक लोकप्रिय हुए। क्षितिज, छोटी सी बात, सांच को आज नहीं, गोधुली और उत्सव फिल्में लिखने वाले शरद जोशी ने 25 साल तक कविता के मंच से गद्य पाठ किया। उन्होंने टेलीविजन के लिए ये जो है जिंदगी, विक्रम बेताल, सिंहासन 32 सहित अनेकों धारावाहिकों में काम किया।
राइट, एंड another personality we pay tribute to today is the young Indian flight attendant who on this day in 1986 saved a large number of passengers on board Pan Am Flight 73, which had been hijacked by 4 terrorists from the Abu Nidal organization after it made a stopover at Jinnah International Airport in Pakistan. And around 17 hours into the standoff, after she opened an emergency exit door and began helping passengers escape from the plane, Neerja was shot and killed by the hijackers. Posthumously, Bhanot became the first female recipient and until 2003, the youngest recipient of the Ashok Chakra, which is the highest peacetime gallantry award by India. She also received several accolades from the United States.
विमान अपहरण की घटना और नीरजा भनोट पर 2016 में एक फिल्म भी बनी जिसमें नीरजा का किरदार सोनम कपूर ने अदा किया। आइए सुनते हैं इसी फिल्म से ये गीत।
कहता ये पल खुद से निकल जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल।
भारतीय फिल्म जगत को मधुर सुरों से सजाने वाले महान संगीतकार सलिल चौधरी की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने हिंदी के साथ साथ बंगाली और मलयालम फिल्मों के लिए भी संगीत दिया। सलिल चौधरी को एक प्रयोगवादी और प्रतिभाशाली संगीतकार के तौर पर जाना जाता है। इसकी झलक मधुमति, दो बीघा जमीन, आनंद और मेरे अपने जैसी फिल्मों के मधुर संगीत में दिखाई भी देती है। 1958 में विमल राय की फिल्म मधुमति के लिए सलिल चौधरी सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्मफेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए और 1960 में आई फिल्म काबुलीवाला में मन्ना डे का गाया गीत ए मेरे प्यारे वतन आज भी श्रोताओं की आंखों को नम कर देता है।
तुझको बिल्कुल दुबारा तू ही मेरी आरज़ू तू ही
His music is celebrated for its timelessness and freshness. He influenced a generation of musicians, including Rahul Dev Barman and A.R. Rahman as well, fused with his deep roots in Bengali folk and Hindustani classical music to create a distinct and innovative sound. We have another song from the movie. The song's name is Itna Na Mujhe Tu Pyar Badha.
Itna Na Mujhse Tu Pyar Badha Ki Main Ek Badal Awara कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा
इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल
And today is the birth anniversary of Admiral Lakshmi Narayan Ramdas. We remember him with gratitude, an Indian naval officer who served as the 13th Chief of Naval Staff from 1990 to 1993, Admiral Lakshmi Narayan Ramdas. It is his birth anniversary today. Ramdas joined the Indian Navy in 1953 and served as the Flag Lieutenant to Admiral Ramdas Kattari, the first Indian Chief of the Naval Staff. During the Indo-Pakistani War of 1971, he was involved in a naval blockade of East Pakistan, hindering attempts to evacuate 93,000 troops and leading to East Pakistan's surrender, for which he was awarded the Veer Chakra. Salute to these brave men who show exemplary bravery, sacrifice and commitment in safeguarding our nation.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और अनुजा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की.
नमस्कार.